ओम शांति। शांतिवन के इस सुंदर परिसर में आप सभी ब्रह्मावत्सों का नुमह शाम के समय स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उन महापुरुषों में एक नाम आता है पुरुषोत्तम राम जी का, क्योंकि वह पुरुषों में उत्तम स्थान रखते थे। भक्ति मार्ग में इसी उत्तम स्थान पर होने के कारण उन्हें भगवान की तरह पूज्य माना जाता है। परम पिता परमात्मा ने ज्ञान मार्ग में एक अनुपम कृति इस मधुबन की धरा पर तैयार की, उत्तम पुरुष समान भ्राता रामलोचन जी के रूप में। हम सभी भ्राता जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता जी ने अपने नाम अनुरूप स्वयं को भगवान की आज्ञा व कदम पर कदम रख एक सफल तपस्वी स्वरूप में ढालकर जीवन सफल किया है। प्रारंभ से ही उनकी प्रबल इच्छा रही कि इतनी तपस्या करूं बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी के नजदीक आपका लौकिक जन्म हुआ, जहां स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने लौकिक जीवन में एक जौहरी के रूप में ख्याति प्राप्त की। वो स्थान था कलकत्ता। आपने भी सन 1972 में कलकत्ता में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर अपने अलौकिक जीवन का आरंभ किया। आपकी सबसे बड़ी विशेषता रही कि आप पहली बार बाबा से मिले और उसी क्षण समर्पण का निश्चय किया। आज हम आपके मुखारविंद से सुनेंगे एक रस अचल अडोल स्थिति। एक रस अचल अडोल स्थिति, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान योग के अनुभवी सभी हैं। हर एक आत्मा को मीठे बाप दादा ने अनुभव कराया है। जिस अनुभव के आधार से आप इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो अभी तक अनुभव हुए वो थोड़े समय के बाद उस अनुभव के स्थिति से हम अलग हो जाते हैं। आप तपस्या में बैठे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन वो अनुभव आपका कर्म क्षेत्र पर रहे, व्यवहार में रहे, निरंतर रहे, वो नहीं है। जबकि हम आप सबको एक रस तक पहुंचना है, क्योंकि संगम युग पर हमें बाप समान बनना है। बाबा भी एक रस है और भविष्य में हम आप सबको देवी या देवता बनना है वो भी एक रस है। तो प्रजंट पुरुषार्थ अपना सबका यही होना चाहिए कि एक रस स्थिति रहे। बातें बहुत आएंगी क्योंकि जितना पुरुषार्थ बढ़ेगा उतनी बातें अनेक प्रकार की आएंगी। युद्ध का मैदान है लेकिन उन सब बातों के बीच में आत्मा को एक रस रहना है, इसका अटेंशन रखना है। इसके लिए चार बातों पर अगर हम अटेंशन रखें तो एक रस रह सकते हैं। वो चार बातें हैं। पहली बात है अपना हर संकल्प बोल कर्म श्रीमत प्रमाण हो। संकल्प बोल कर्म श्रीमत प्रमाण हो। दूसरा, बाप के साथ सर्व संबंधों की रसनाओं का सुख लेकर आत्मा एकदम तृप्त भरपूर इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए। तीसरी बात, ड्रामा पर एकदम अडिग रहना है। और चौथी बात, अशरीरी होने का अभ्यास बहुत करना है। जितना जितना आप अशरीरी होते जाएंगे एक रस बनते जाएंगे। तो चारों बातों में पहली बात है श्रीमत पर चलना। आप श्रीमत पर चलेंगे इससे अचल अडोल कैसे बन जाएंगे? श्रीमत पर चलने से सबसे पहला फायदा, आपके हर कर्म का जिम्मेदार स्वयं भगवान हो जाएगा। जब आपके कर्म का जिम्मेदार भगवान है तो वो कर्म श्रेष्ठ होगा। दूसरा, जितना श्रीमत पर चलेंगे हर कर्म श्रेष्ठ कर्म ही होता जाएगा। श्रीमत पर चलने से गलत कर्म हो ही नहीं सकता जो मन में उलझन आए, हमेशा श्रेष्ठ ही होगा। तीसरा, श्रेष्ठ कर्म करने के कारण आपके पास समर्थ का खाता जमा होता जाएगा। इससे आगे पांचवा फायदा, समर्थ खाता जमा होने से बुद्धि दिव्य और शक्तिशाली होती जाएगी। इससे निर्णय एक्यूरेट देगी। इसके बाद श्री मत पर चलने से आपका पास्ट का खाता खत्म होता जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करना माना पास्ट का माइनस होना ऑटोमेटिक है। अच्छे संस्कार लाओ, बुरे अपने आप चले जाएंगे। दिव्य गुण धारण करो, अवगुण अपने आप चले जाएंगे। तो श्रेष्ठ कर्म बढ़ाओ तो दूसरा माइनस होता जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा है कि श्रीमत पर चलने से मीठे बाबा की दुआएं मिलती, भगवान की दुआएं साधारण नहीं है। जिस ब्राह्मण आत्मा को भगवान की दुआ मिल जाए, दुआ कहो, आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, मिल जाए, उसका असंभव काम जो आप स्वप्न में भी नहीं सोचा था, चाहे शारीरिक बीमारी, चाहे किसी प्रकार का कोई भी काम हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, वो ऐसे हो जाता है कि सूली से कांटा तो क्या, सूली से फूलों का सेज बन जाता है। अगर प्रभु की दुआ मिली तो वरदान रोज मुरली में मिलता है, लेकिन क्या वो हमें मिलता है? क्योंकि जब वरदान मिल जाएगा फिर वरदान काम करता है, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वरदान लेने में मेहनत है। क्या मेहनत है? श्रीमत प्रमाण चलना। लेकिन जब वरदान मिल जाता है तो फिर वरदान काम करता है, आपको मेहनत नहीं पड़ती। जैसे अपनी गुलजार दादी थी, जब शुरू में हैदराबाद सिंध में जब आई, सारी दादियां थी, इस समय तो हम दादी कहेंगे, उस समय तो सब छोटी छोटी थी, सब पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन नंबर वार तो होते ही हैं। तो गुलजार दादी का पुरुषार्थ बहुत विशेष रहा। जिस पुरुषार्थ को देखकर बाप दादा ने, साकार बाबा ने, उस समय हैदराबाद सिंध में जब छोटी थी गुलजार दादी, तब बाबा ने उसको वरदान दिया था। क्या? कि ये बच्ची बहुत मीठी है, इसकी बाणी बहुत मीठी है, आगे चलकर इसकी बाणी बहुत सेवा करेगी, इस बच्ची के नयन तपस्वी हैं, रूहानी हैं, आगे चलकर ये नैन बहुत सेवा करेंगे। तब दादी बहुत छोटी सी थी, उस समय का वरदान बाद में स्वयं बाप दादा गुलजार दादी के तन में प्रवेश होकर उस बाणी को सफल किया, उस वरदान को सफल किया, नयनों के द्वारा दृष्टि देता था। नयन गुलजार दादी के थे लेकिन देता भगवान था। वाणी स्वयं भगवान गुलजार दादी के मुख के द्वारा बोलता था। तो ये अगर हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो कई चीज जो हमको पता ही नहीं पड़ती है लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानता है, वो आपको दे देता है वरदान। आपको नहीं पता है लेकिन मिल गया होता है और वो ऐसे समय पर काम आता है जो आप सोच नहीं सकते। जिसका एक उदाहरण बताता हूं, पिछली क्लास में बताया था, महाराष्ट्र की एक बहन थी टीचर, वो आंख की कमजोर थी तो उसको कम दिखाई देता था। कई बार उसने ऑपरेशन कराया लेकिन रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और पिछले साल उसकी आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई, एकदम ब्लाइंड हो गई। और उसी बीच में उसे कोरोना हो गया। अब जब कोरोना हुआ तो निश्चित है उसको तो ले ही जाएंगे, सेंटर पर तो रखने का प्रश्न ही नहीं है। और हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट जब होता है तो उसको कोरोना की ही दवाई देते हैं ज्यादातर, और बीमारी पर ध्यान नहीं देते। अगर किसी का और अंग कमजोर है तो कोरोना वाली दवाई बहुत पावरफुल होती है, वो अंग नहीं सहन कर पाता है तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब उस बहन को कोरोना की दवाई दी गई तो उस कोरोना की दवाई का फल ये हुआ कि उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई और इतनी वापस आई कि चश्मा हट गया, सब कुछ एकदम बच्चे की तरह आंख बन गई। ये श्रीमत पर चलते रहने से भगवान के दुआओं का फल है। कहां कब काम करे ये हमें पता नहीं है। और जो श्रीमत पर चलता है वो बड़ा हल्का रहता है, उसको कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते। अगर सेंटर पर या घर में कोई परेशानी भी है वो श्रीमत पर चल रहा है तो अंदर उसको ये रहता है कि मैं बाबा के श्रीमत पर चल रहा हूं या चल रही हूं, बाबा जिम्मेदार है, बाबा जिम्मेदार है। और जहां इतना आत्मा अपने को समर्पित कर देती है वही उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो ये एक अपनी एक रस स्थिति बनाने के लिए श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है। अब कई बाबा के बच्चे जो घर में रहते हैं, श्रीमत है अपनी मुरली, कई चीजें ऐसी हैं जो मुरली को प्रैक्टिकल में लाना गृहस्थ में मुश्किल लगता है। मान लो आप अकेले घर में चलते हैं ज्ञान में और कोई नहीं चलता है, अब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या करें, परिवार वालों के हाथ का खाएं या ना खाएं, क्या करना चाहिए? ऐसे बहुतों के साथ होगा, कोई एक ही ज्ञान में चल रहा है, पूरा परिवार नहीं चल रहा है, आप बीमार पड़े आप क्या करेंगे? क्या श्रीमत कहती है, खाएं या नहीं खाएं? जब ऐसी बात सामने आए जो अपनी समझ से परे हो, क्योंकि श्रीमत कहती है तुम्हें पवित्र के हाथ का खाना है, बाबा की याद का बनाया हुआ भोजन खाना है, ये जो बाबा किसी किसी को छुट्टी देता है वो सबके लिए नहीं है, वो पर्सनल है। कुछ बाबा की श्रीमत जनरल है, कुछ श्रीमत पर्सनल है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि पर्सनल श्रीमत और जनरल श्रीमत। पर्सनल श्रीमत इंडिविजुअल बाबा देता है, जैसे कई मिलिट्री वालों को देता है या किसी को पर्सनल देता है। अपने ब्रजमोहन भाई हैं, दिल्ली वाले सब जानते हैं, ब्रजमोहन भाई और रमेश शाह जो शरीर छोड़ दिया, ये दोनों सीए थे, चार्टेड अकाउंटेंट लौकिक में। तो एक बार दोनों बाबा से मिल रहे थे तो दोनों ने बाबा को कहा कि बाबा हमारा सबका ऐसा है धंधा जो हमें आपस में मीटिंग होती है, कुछ होता है तो वहां चाय पीना पड़ता है, तो क्या करें, वहां चाय पिए या नहीं पिए, क्योंकि चाय तो नौकर बना के लाता है, तो पिए या नहीं पिए। तो बाबा ने ब्रजमोहन भाई को कहा कि तुम चाय पी सकते हो, तुम्हें चाय पीना है, और रमेश शाह को कहा तुम्हें नहीं पीना है। सीए दोनों हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों हैं, एक को बोला पीना है, एक को बोला नहीं पीना है। अब दोनों को बाबा ने कहा क्यों इनको पीना उनको नहीं पीना, ब्रजमोहन भाई को बाबा ने कहा कि आप जब मीटिंग करते हो, आपस में बैठते हो, अगर आप उनका कहना नहीं माना, अपने साथ के ऑफिसरों का चाय नहीं पिया, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको जो सेवा के लिए छुट्टी दे देते हैं वो छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप पी लिया करो। और रमेश भाई को बोला, आप बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि अगर आप नहीं पियोगे तो जो आपके क्लाइंट हैं, ग्राहक हैं, जो भी हैं या जहां भी आप जाते हैं, तो कहेंगे देखो साहब इतने ईमानदार हैं कि किसी के हाथ का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, तुम्हारे ग्राहक बहुत बढ़ जाएंगे। अब ये श्रीमत इंडिविजुअल हुई, सबके लिए एक ही नहीं है। तो आपको बता रहे थे कि आप घर में ज्ञान में चल रहे हैं और कोई नहीं चल रहा है, अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है, बीमार हैं या कुछ हैं, तो खाएं या नहीं खाएं, उसके लिए बाबा ने कहा था आपके सेंटर की निमित्त जो टीचर है उनको आप अपनी बिल्कुल साफ साफ बात बता दो और उस समय उनसे जो डायरेक्शन मिले, कहती हैं अगर खा लो तो आप खा लो, आपके ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा, जिम्मेदार बाबा हो जाएगा। अगर कहते नहीं खाओ, मान लो अगर कहते नहीं खाओ तो कुछ ना कुछ प्रबंध करके देंगी जरूर, क्योंकि हम तो बीमार हैं। तो कितना फायदा है पूछने से। लेकिन देह अभिमान बस पूछते नहीं है। ये छोटी छोटी बहनें ये क्या बताएंगी हमें, ये नहीं सोचते इन छोटी बहनों को निमित्त किसने बनाया है। अगर हम छोटी बहनों को ये समझ लें छोटी बहनें हैं, ये निमित्त बनने लायक नहीं, इनसे ज्यादा मैं जानता हूं या जानती या धनवान हूं या पढ़े लिखी हूं, इसका मतलब ये हुआ हम भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, आप कुछ नहीं जानते हो जो इनको निमित्त बना दिया है, मैं जानता हूं ये क्या है। क्योंकि भगवान ने निमित्त बनाया है, इसलिए अगर सामने कुछ श्रीमत पर चलने में मुश्किल आता हो तो निमित्त से राय ले लो। एक बार विदेशी अव्यक्त बाबा से मिल रहे थे, तो विदेशी तो बोलने में बड़ा फ्रैंक होते हैं, उन्होंने बाबा से कहा जब बाबा बैठा हुआ है तुम बाप को छोड़कर टीचर से क्यों राय ले। तो बाबा ने कहा बात तो राइट है, लेकिन जब तुम्हारे सामने बात आती है तो उस समय आपका माइंड इतना क्लियर नहीं होता है जो आप बाप से पूछ सको, इसलिए आपके मदद के लिए टीचर बहनों को निमित्त बनाया है। तो कुछ भी होता है टीचर बहनों से पूछ लो। तो श्री मत पर चलते रहो तो आप अचल अडोल एक रस रहेंगे, क्योंकि बाबा जिम्मेदार हो जाएगा। अभी भी अगर कोई थोड़ी भी अपनी मत पर चलता है तो उसको परेशानी होती, सफलता नहीं मिलती। श्री मत तो सफलता दिलाने वाली है। दूसरी बात है एक रस, भगवान के साथ सर्व संबंधों का रस लेकर इच्छा मात्रम अविद्या बनना। अगर कोई भी किसी प्रकार की इच्छा है तो आप एक रस हो ही नहीं सकते, किसी प्रकार की भी इच्छा है। तो एक रस के लिए भगवान से सर्व संबंधों का सुख लेकर इच्छा मात्रम अविद्या बनो, क्योंकि इस समय चार प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अज्ञानी, एक ब्राह्मण, एक फरिश्ता, एक देवता, लास्ट परमात्मा। पांचों में अंतर क्या है? क्या अंतर? मनुष्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, परमात्मा। चेक करना अभी चारों में हमारी स्थिति कहाँ है। बन्ना बाप समान है। मनुष्य अर्थात अज्ञानी, अगर वो मैं हूं अभी चेक कर लेना, मनुष्य अर्थात जो मन के बस में हूं, मन के बस में, जिसको मन चलाता हो वो मनुष्य है। भले ब्राह्मण बन गए हो लेकिन हो मनुष्य, जो मन के बस में है वो मनुष्य कहलाते। ब्राह्मण जो श्रीमत के आधार से अपने मन को बस में करने वाले हैं, ब्राह्मण अर्थात श्रीमत के आधार से अपने मन को बस में करने वाले, फरिश्ता अर्थात संकल्पों के सिद्धि स्वरूप, संकल्पों के सिद्धि स्वरूप, जो संकल्प करना चाहें, संकल्पों से जहां जाना चाहें, जिस स्थिति में स्थित होना चाहें, जहां चक्कर लगाना चाहें, फरिश्ता अर्थात संकल्पों के सिद्धि स्वरूप, देवता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, सब चीजें प्राप्त, कोई इच्छा नहीं। परमात्मा अर्थात सर्व की इच्छा पूरी करने वाला। अब आप चेक करो मैं कहां हूं। अभी मनुष्य हूं या ब्राह्मण या फरिश्ता या देवता या परमात्मा के समान पहुंच रहा हूं। तो भगवान के साथ सर्व संबंधों का सुख लो। संबंधों का सुख लेने की विधि है सूक्ष्म वतन में आप आकारी रूपधारी सामने बाप दादा आकारी रूपधारी आत्मा जो भी संकल्प करे जिस भी संबंध का मीठा बाबा वही संबंधों की रचना ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा देता है। ये संबंधों की रचना इच्छा मात्रम अविद्या बनाती, आत्मा तृप्त हो जाती है। अंदर से एक ही आवाज आता है, पाना था सो पा लिया, एकदम भरपूर। फिर कोई स्थिति अप डाउन का प्रश्न ही नहीं है, चाहना का प्रश्न ही नहीं है। तीसरी बात है ड्रामा। ड्रामा पर अडिग वही रह सकता है, ड्रामा उसी का लग सकता है जो अभी से छोटी छोटी बातों पर ड्रामा लगाने का अभ्यास करे। आप अपने आप से अभी चेक करके देखो, आप मान लो स्टेशन जाने वाले हो और आपका टिकट गायब हो जाए, क्या हलचल होगी? सोचो, हो सकता है उस समय मन शांत, क्या ड्रामा लगेगा? अच्छा कोई बात नहीं, टिकट गायब हो गया, हो पाएगा? नहीं। ड्रामा लगाने का मतलब ये नहीं कि हमें कर्तव्य नहीं करना है, टिकट को ढूंढना नहीं है। ड्रामा लगाने का मतलब है साक्षी हो जाना, बाबा को सौंप कर ये पक्का अंदर बिठाओ जो कल्प पहले हुआ है होकर रहेगा, जो कल्प पहले हुआ है होकर रहेगा। जैसे आज की भी मुरली में शुरू में यही था कि जो अब हुआ है वो कल्प के बाद होगा, जो चेहरा सकल अब जिसकी भी देख रहे हो 5000 बरस के बाद ही देखोगे। तो अगर छोटी छोटी बातों पर ड्रामा लगाने का पुरुषार्थ करो तो बड़ी बात पर लग सकता है अंत में, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, ड्रामा 3 एंगल से देखो। पहली बात, ड्रामा न्यायकारी है। दूसरा, ड्रामा कल्याणकारी है। तीसरा, ड्रामा एक्यूरेट है। न्यायकारी है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट, ये 3 बातों को रख करके ड्रामा लगाओ। सिर्फ एक बात नहीं, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा वही करेगा जो हमारा जैसा कर्म है। ड्रामा पक्षपात नहीं करता है, न्यायकारी है। हाँ, अगर हमारे सामने कोई समस्या है और हम उसको हटाना चाहते हैं तो उसको हटाने की विधि जो बाबा ने बताई है उस विधि को अपनाओ तो ड्रामा में जो चीज आप चाहते हो ना वो बाबा के बताए हुए विधि के प्रमाण करने से सफलता मिल जाएगी। कई ये प्रश्न करते हैं कि क्या ड्रामा बदला जा सकता है क्या? क्या कहते हैं? आज तो बाबा ने कहा हूबहू है, क्या ड्रामा बदला जा सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं, दोनों है, बदला भी जा सकता है नहीं भी। अज्ञानी लोगों के लिए नहीं है, हूबहू है, आपके सामने मार्जिन है, संगम युग है, भगवान आया हुआ है, कलप पहले वाली सीन आएगी। लेकिन अगर बाबा जैसे कहता है वैसे करो तो, जैसे बाबा मुरली में कहता है कि कोई बच्चा अगर 24 घंटा, सुना होगा मुरली में, मुझे निरंतर याद कर ले तो कर्मातीत हो जाएगा। अब अगर आप याद करते नहीं हो तो बाबा क्या करे? जैसा बाबा कहता है वैसा करो, ये एक चीज समझ लो। ये ड्रामा शूट हो रहा है, मुरली में सुनते हैं शूट हो रहा है, और जब ड्रामा शूट होता है तो डायरेक्टर सामने खड़ा होता है, एक्टर एक्ट कर रहा है। अगर एक्टर गलती किया जैसा डायरेक्टर कहता है वैसा की कहने पर नहीं किया, गलत किया, तो डायरेक्टर के पास अधिकार है उसे उस पार्ट से चेंज कर दे, उसको माफ कर दे, उसको उस पार्ट के लिए दोबारा चांस दे दे। ये डायरेक्टर के पास अधिकार है। अपना डायरेक्टर कौन है? मीठा बाबा। उसके पास क्या अधिकार नहीं है? सब अधिकार है, सिर्फ हम उसके श्रीमत प्रमाण चलें बस। सब कुछ कर सकता हूं बच्चों के लिए, हम चलें श्रीमत प्रमाण बस। भगवान आया ही है मनुष्य को देवता बनाने, बिगड़ी को अच्छा बनाने, पतित को पावन बनाने, आया इसीलिए है ना। सिर्फ हम श्रीमद् प्रमाण चले तो तीन चीजें न्यायकारी है ड्रामा। जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्म का फल है। ड्रामा किसी के पास पक्षपात नहीं करता है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, जैसा कर्म है वैसा उसको फल है। तो कोई बात भी सामने आती है इसको स्वीकार करो, ये मेरे किए हुए कर्म का फल है। किसी की गलती नहीं है, मेरे किए हुए कर्म का फल है कभी का। दूसरी बात, ड्रामा कल्याणकारी है। संगम युग पर जो कुछ भी ब्राह्मणों के लिए होता है सब कल्याणकारी है। ये नहीं कि श्रीमद् प्रमाण ना चले और कहे कल्याणकारी है, वो नहीं। अगर बाबा के श्रीमद् प्रमाण चल रहे हैं तो हर एक चीज कल्याणकारी है। बाबा जिम्मेदार है, हर एक को अनुभव होगा कि जब हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं तो आज नहीं कल उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। लेकिन श्रीमत पर चले तो ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। कई बार बाबा मुरली में कहता है कि कोई पूछे तो क्या हाल, बोलो प्रेजेंट बहुत अच्छा, पीछे अच्छा था, अब अच्छा है, आगे और अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? बाप कल्याणकारी, संगमयुग कल्याणकारी, आप खुद कल्याणकारी, तो अकल्याण का प्रश्न ही नहीं। हाँ, अगर आप के सामने कोई परिस्थिति आती है, आपने बाबा की मुरली सुनी होगी कि आप मधुबन आए और वापस जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांग कट गई। बाबा कहता है इसमें बहुत बड़ा कल्याण हुआ। सुना है ना मुरली? अब कटी टांग और हुआ कल्याण। कैसे? इसका जवाब बाबा ने दिया था। देखो, आप हम सब बाबा के बच्चे हैं, हमारा आप सबका जीवन का आधार मीठा बाबा है, सबके जीवन की बागडोर बाबा के हाथ में है। अब जो बच्चा जितना बाबा पर अर्पित है, अपने को श्रीमद् प्रमाण चला रहा है, उतना बाबा उसकी संभाल करता है। मान लो आपको बाबा को बहुत ऊंचा पद देना था, आपका ऐसा पास्ट का खाता है, या प्रेजेंट में आप श्रीमद् प्रमाण चल रहे हो, आपको ऊंचा पद बाबा को देना है, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण चलने वालों का पद तो ऊंचा है ही है, लेकिन आप आत्मा पर पास्ट जन्मों का खाता इतना ज्यादा है कि आप कितना भी योग करते लेकिन खत्म नहीं कर पाते। लेकिन बाबा को ऊंचा पद देना है तो एक टांग कटी आपका, सारा खाता खत्म हो गया, आपका ऊंचा पद फिक्स हो गया। अगर ये रहता तो खाता होता तो ऊंचा पद तो मिल सकता नहीं। और किसका क्या खाता है वो बाबा जानता है, वो त्रिकालदर्शी है। हम आप तो सिर्फ एक काल जानते हैं, सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हैं बस, लेकिन मीठा बाबा तो तीनों कालों को जानता है। और तीसरी बात है एक्यूरेट, ट्रामा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। जिस कर्म का जो फल मिलना है, अच्छा या बुरा, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा, वो आपको मिल जाएगा। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं इनके कारण ये हुआ, नहीं। ट्रामा एक्यूरेट। तो ये तीन बातें एक साथ देखो तो आप स्थैर्यम रहोगे। जब एक पक्ष लेकर के ड्रामा को देखते हो, सिर्फ यही सोचते हो ड्रामा कल्याणकारी है, उनके साथ तो ऐसा हुआ, वही बात तो मैंने किया, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नहीं, न्यायकारी भी है, सिर्फ कल्याणकारी नहीं है, न्यायकारी भी है और एक्यूरेट भी है। ये तीनों को एक साथ लेकर ड्रामा पर रहो तो आपकी स्थिति एक रस रहेगी। तीसरी बात है अशरीरी होने का अभ्यास। ये आत्मा जितना स्वयं को शरीर से इस दुनिया से दूर रखेगी, बाबा के पास बैठने का अभ्यास होगा, तो बाबा की शक्ति आत्मा में आते 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 आत्मा बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जाएगी। ये बार बार शरीर से अलग होने का, पूरी दुनिया भूल जाने का, बाप के पास बैठने का, आओ जाओ नहीं, नीचे का संकल्प नहीं आए, बस सब दुनिया खत्म हो गई है, बस मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, बैठो बाबा के पास। कुछ देर बैठेंगे तब बाबा की करंट आप में आएगी, उस प्राप्त हुई शक्ति के आधार से आप समस्याओं को ऐसा समझेंगे जैसे खेल है, मनोरंजन है। मुरली में शब्द सुनते हैं लेकिन ये महसूस तब होगा जब आत्मा भगवान से इतना निकट का संबंध और उतनी निकटता से शक्तियों की प्राप्ति और साथ का एहसास, ये आपको भगवान के समान अनुभव कराएगा। और ये स्थिति ऑटोमेटिक आपको एक रस आसन पर बिठा के रखेगी। तो ये चारों अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो बाप समान की स्थिति प्राप्त कर एक रस बनकर मीठे बाबा के साथ साथ घर चलेंगे, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति।